परम पूज्य गुरुवे गुरुदेव श्री नियम सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि हमें धर्मोपदेश का लाभ हो। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी।
शक्तिकोटि सूर्यरन्नु मीरिदे मत्तु यारदीय ध्वनियु लोकहितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಜ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತ್ಯಾಗ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಆಜ್ ಉತ್ತಮ ತ್ಯಾಗ ಧರ್ಮ ಕೀ ಚರ್ಚಾ ಹೈ. त्याग को धर्म कहा है और इसके विपरीत ग्रहण भाव भोग भाव कहलाता है. क्या भाव? ग्रहण भाव भोग भाव है. और जो कुछ ग्रहण किया था उसको त्यागना, छोड़ना, क्योंकि वो अपना नहीं है. जो ग्रहण किया है किया है, कोई कारणवश किया है, कारण अवश्य कुछ न कुछ होता ही है. कारण के बिना आत्मा ग्रहण भाव वाला हो नहीं सकता और कारण के बिना एकाएकी त्याग भाव वाला भी नहीं हो सकता. त्याग के लिए भी कोई कारण चाहिए और ग्रहण के लिए भी कोई कारण अवश्य चाहिए. त्याग के कारणों को जानने से पूर्व ग्रहण के कारण क्या हैं और ग्रहण करने से आत्मा किस हालत में वह परिणमन करती है, उसकी दशा किस प्रकार की होती है, इसका भी विचार करना ही चाहिए. ग्रहण करने से आत्मा अधर्म आत्मा कहलाता है, क्योंकि ग्रहण भाव अधर्म भाव है और त्याग भाव धर्म भाव है. धर्म त्याग प्रदान होता है, संसार भोग प्रदान होता है. आत्मा अनादि से भोगी बना हुआ है, त्यागी नहीं बन सका. क्यों नहीं बना? इसमें कोई कारण अवश्य है. वे कारण हैं तीन. वे कारण हैं तीन: मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम. इन तीनों के कारण से आत्मा त्यागी नहीं बन सका. मिथ्यात्व को ग्रहण किया है यह मिथ्या तो बाहर से आया हुआ है, अपने आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या स्वभाव है? मिथ्या तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, अज्ञान को भी हमने ग्रहण किया है। ज्ञानावरणी कर्मों का आश्रव, आश्रव भाव से आश्रव करके उसको ग्रहण करके, कर्मों को ग्रहण करके हमने अपने अंदर रखा है, उसके उदय में हम अज्ञानी बन गए। मिथ्यात्व को भी ग्रहण ही किया था, आश्रव किया, बंद किया, फिर उदय अवस्था को पाई। उदय अवस्था में आने के बाद हमने उसका जो भी फल था उसका अनुभव किया। ये भी बाहर से ही आया है। मिथ्या तो कहां से आया? बाहर से। अज्ञान को बढ़ाने वाले कर्म कहां से आ गए? बाहर से। और तीसरा कारण है असंयम। असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत कर्म ही है। जीव जिन कर्मों के उदय से असंयमी बनता है, वे कर्म वे भी बाहर से ही आए हुए हैं। इस प्रकार से ग्रहण हमारा तीन प्रकार का हुआ है। मिथ्यात्व का ग्रहण हुआ है, ज्ञानावरणी कर्मों का ग्रहण हुआ है, और मोहनी कर्म का ग्रहण हुआ है, जो असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत मोहनी कर्म है। वो तीन है, अनंतानुबंधी, द्रव्य कर्म, अप्रत्याख्यानावरणी द्रव्य कर्म और प्रत्याख्यानावरणी द्रव्य कर्म। इस प्रकार से हमने तीन प्रकार के कर्मों को ग्रहण किया है और इनके उदय में हम भोग भाव वाले हो चुके। भोग भाव में कारणीभूत कर्म कौन सा होगा? मोहनी कर्म। यह मोहनी कर्म हमें त्याग धर्म की ओर जाने नहीं देता। सही है ना? मोहनी कर्म त्याग धर्म की ओर जाने नहीं देता। सही है ना? नहीं, गलत तो होना चाहिए। मोहनी कर्म हमें त्याग की ओर जाने नहीं देता। कर्म जाने नहीं देता है कि हम ही नहीं जाते? तो गलत तो था वो पहला बोला हुआ। कर्म हमारे लिए कुछ नहीं करता, कर्म हमारे लिए तुम असंयमी बने रहो ये भी नहीं कहता, तुम संयमी बनो ये भी नहीं कहता, किंतु तुम असंयमी बनना चाहते हैं तो बने रहो, संयमी बनना चाहते हैं तो संयमी बनो। मैं तुम्हारे लिए बाधा नहीं डाल सकता। हमसे तुम यदि बाधित होना चाहते हैं तो मैं निमित्त बन सकता हूं। तुम बाधित हमसे नहीं होना चाहते हैं तो मैं भी तुम्हारे लिए निमित्त नहीं बन सकता। जिसको हमने ग्रहण किया है, असंयम भावों से ग्रहण किया है, वह कर्म मोहनी कर्म तीन प्रकार का है। अनंतानुबंधी को ग्रहण किया, अप्रत्याख्यानावरणी कर्म को ग्रहण किया है, प्रत्याख्यानावरणी कर्म को ग्रहण किया है, इसके उदय में हमारे परिणाम नियम से असंयम रहेंगे। उदय से सूर्योदय होगा, धूप तो लगेगी, और सूर्योदय होने ही ना दे तो धूप भी नहीं लगेगी। उस सूरज के उदय को कोई रोक नहीं सकता, किंतु ये जो संयम की उत्पत्ति में बाधा करने वाले मोहनी कर्म हैं, इनके उदय को हम रोक भी सकते हैं। हे सूर्य, उदय मत होना, क्योंकि मैं अपना काम करने जा रहा हूं, मैं अब तुम्हारा साथी नहीं हूं, मैं अब संजुलन कषाय के उदय का साथी बनना चाहता हूं, तुम तीन के उदय का साथी नहीं बनना चाहता हूं। किस किस के? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, तीन के उदय का साथी हम बनना नहीं चाहते, इतना कह दो। तो वो भी कहते हैं, मैं कहां कह रहा हूं कि मेरे साथी ही बने रहो, तुम जाना चाहते हैं तो जाओ, अपनी स्व इच्छा से जाओ, रहना चाहते हो तो रहो, अपनी स्व इच्छा से रहो, तुम्हारे लिए हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, न रोकने की जबरदस्ती, न जाने की जबरदस्ती। तो हम कैसे कहें कि कर्म हमारे लिए बाधक हैं? यदि कर्म को बाधक 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 कहते बैठेंगे तो वो तो रहने वाले ही हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, और बाधक ही रहते हैं, इनके कारण से हमको संसार बना हुआ है, ऐसा कहेंगे तो कर्म हमारे साथ सदा रहने वाले हैं। फिर हम संयम को कैसे धारण करें? तो यहां पर पुरुषार्थ के संबंध में विचार करना अनिवार्य हो जाता है, हमको संयम पुरुषार्थ पर विचार करना चाहिए। पुरुषार्थ करे तो हम इन कषायों को हटा सकते हैं या नहीं, नहीं करे तो ये रह सकते हैं क्या नहीं, नहीं करे तो रहेंगे और पुरुषार्थ करे तो हटेंगे। जीव कर्माधीन है, अवश्य है कर्माधीन, कर्मों का फल भी भोगता है, अवश्य भोगता है कर्मों का फल, किंतु कर्म जीव को जबरदस्ती कर्म मेरा फल भोगो ये कहते हैं क्या? नहीं कहते। हम ही उसके फल को भोगना चाहते हैं तो वो सहयोग देते, निमित्त बनते। वह कर्म बाह्य निमित्त है, बाहरी, और हम अपना जो उपादान है, हमारे पास जो उपादान शक्ति है वह स्वाधीन है, वो हमारे अधीन है। उपादान में कर्म नहीं है, उपादान न पुरुषार्थ से प्रभावित होता है न कर्मों से प्रभावित होता है। उपादान उपादान है, वह एक माध्यम है जिसका हम सदुपयोग करना चाहे तो सदुपयोग कर सकते हैं, और दुरुपयोग करना चाहे तो दुरुपयोग भी कर सकते। पुरुषार्थ के द्वारा दो निमित्तों को साथ लेकर के हम सदुपयोग करेंगे तो सदुपयोग होगा, दुरुपयोग करेंगे तो दुरुपयोग होगा। ये तीन कर्म जो हमारे जीवन में असंयम भावों को पैदा करते हैं, और आत्मा असंयम भावी हो जाता है, असंयम भावी। ये तीनों कर्म हमारे लिए बाह्य निमित्त मात्र हैं, अभ्यंतर निमित्त हमारा सोया हुआ है, तो वे हमारी आत्मा में असंयम भावों को उत्पन्न कराने में निमित्त बन सकेंगे, और हमारा उपादान जागृत है, सोया हुआ नहीं है, तो इस जागृत उपादान के कारण से वे अनंतानुबंधी आदि कषाय जो असयम के भावों की उत्पत्ति में कारण है, बाह्य कारण है, ये जबरदस्ती फल देंगे क्या? नहीं, वो रास्ता देंगे, रास्ता छोड़ेंगे वो। हमारा उपादान जागृत है तो कर्म भी कहते हैं, तुम जागृत हो, तुम महान हो। जब तक तुम महान नहीं थे तब तक तुमको अपने अंडर में रखने का हमने प्रयत्न किया, लेकिन तुम्हारे पास अब महानता जागृत हुई। इस महानता के कारण से आप महान ही बनो, हम महान आत्माओं को बाधा नहीं पहुंचाते। पुरुषार्थ के भावों को जगाना पड़ता है, आज उत्तम त्याग है, त्याग का नाम उत्तम त्याग, और उत्तम त्याग का अर्थ होता है मिथ्यात्व, असयम और अज्ञान, इन तीनों को त्याग करने का नाम उत्तम त्याग है। उत्तम त्याग, इसमें से एक त्याग दो तो उत्तम त्याग नहीं। पहला निमित्त कौन सा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व इतना ही त्याग दिया तो उत्तम त्याग की कोटि में आत्मा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। फिर कौन सा त्याग है ये? त्याग तो हुआ है, एक मिथ्यात्व के त्याग होने के कारण से उसके साथ अनंतानुबंधी कषाय का भी त्याग स्वतः हो गया, और मिथ्यात्व के उदय के कारण से पाप कर्म, हमको 16 प्रकार के पाप कर्म बंद सकते हैं, बनते थे, बंद रहे हैं, उनको रोका जा सकता है। मिथ्यात्व के उदय के कारण से आत्मा कितने पाप कर्मों का बंद करता है? 16। और अनंतानुबंधी कषाय के कारण से कितने कर्मों का बंद करता है आत्मा? 25। ये 16 और वो 25, 41। 41 कर्मों को ग्रहण करता है आत्मा, ग्रहण भाव, अधर्म भाव, त्याग भाव, धर्म भाव। त्याग भाव सो धर्म भाव, आत्मा को त्याग की बुद्धि ही नहीं आई अनादिकाल से, मुझे क्या त्यागना है यही समझ में नहीं आया। त्याग भी धर्म होता है ये भी पता नहीं है। और आत्मा जब तक त्याग की ओर नहीं बढ़ता तब तक वह हल्का नहीं होता, ग्रहण करेगा भारी बनेगा, छोड़ता जाएगा, निकाल निकाल कर बाहर फेंकता जाएगा, हल्का बनेगा। हम भारी बनेंगे तो दुख का अनुभव करेंगे कि सुख का? दुख का। और निकाल कर बाहर डालते जाएंगे तो सुख का अनुभव करेंगे कि दुख का? सुख का। तो आप लोगों के लिए भी उपदेश दिया है जिनेंद्र भगवंत ने, आप भी सुखी होना चाहते हैं, जो सुख के जिज्ञासु हैं, उन सुख के जिज्ञासुओं के लिए यदि कुछ तो हम सुख का अनुभव करें ऐसा आप विचार कर रहे हैं, यदि ऐसा विचार कर रहे हैं तो कहते हैं आप भी सुखी हो सकते हैं। आत्मा के भीतर 120 किलो का भार है, कितने? 120 किलो का भार है और यदि एक मिथ्यात्व का त्याग करेंगे तो 41 किलो का भार उतर जाता है। अब कितना रह गया, 120 में से 41 किलो चला गया, हाँ 79। श्रावक रहते हुए भी हम 41 किलो कर्मों के भार को उतार सकते हैं। कर्म जो उदय में आता है उस उदय के भार को उतारना, उदय में जब आता है ना तभी भार महसूस होता है, उदय में नहीं आएगा तो भार महसूस नहीं होगा। यहां उतारने का तात्पर्य क्या है, यहां उतारने का तात्पर्य उदय को उतार दो, उदय में रहने मत दो। तो उदय से हमने उतार दिया, कहां उतार दिया, बाहर नहीं गया, फिर भी 41 किलो वजन कम हुआ और हल्कापन महसूस हो रहा है, कुछ सुख की अनुभूति हो रही है। कैसा है धर्म का मार्ग, ये धर्म का असली मार्ग है। कर्मों का त्याग ये असली धर्म है। आज त्याग धर्म है ना, किसका त्याग करें? हम एक टाइम का भोजन त्याग करते हैं, भोजन के त्याग से कर्मों का त्याग नहीं होगा। कर्मों को उद्देश्य, कर्मों के त्याग का उद्देश्य बना करके अगर भोजन का त्याग कर रहे हैं तो कर्मों का भी त्याग होगा और भोजन का भी त्याग होगा। उपवास करते हैं ये तप है, संयम धारण करते हैं ये संयम धर्म है। कर्मों के वजन को कौन सा धर्म कम कर देता है ये बताओ, नहीं त्याग धर्म नहीं करा, त्याग तो उसका फल है जिसके कारण से आप हल्के हो गए, उसका फल है त्याग। ये किसका त्याग किया आपने, असंयम का त्याग किया। तो असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत कर्म कितने थे, वो तीन थे। इन तीनों कर्मों को हटाया तो क्या आया, संयम आया। संयम किसका कारण है, कर्मों के संवर के लिए कारण है। संयम से निर्जरा नहीं होती, तप से निर्जरा होती है, संयम से संवर होता है। संयम किसका कारण, संवर का, और तप किसका कारण, निर्जरा का। तो देखो किसने कितना कर्मों के भार को उतारता है, हम जरा समझें इसको। उतारने वाले यहां पर दो ही जन हैं, एक मुनि और एक श्रावक। जो श्रावक मुनि बनना चाहता है उसको 55 किलो भार को उतारना पड़ेगा, 55 kg, 55 किलो भार को उतारना पड़ेगा, 55। और ये 55 बचपन में भी उतार दो तो चलेगा, लेकिन वृद्धावस्था में जाकर के 55 उतारने का प्रयत्न करोगे तो विफल हो जाओगे, क्योंकि उतारने के लिए भी शक्ति चाहिए, क्योंकि उतारने के लिए भी जवानी चाहिए, क्योंकि उतारने के लिए भी एक अंतरंग सामर्थ्य चाहिए, विशुद्धि चाहिए। वो परम पुरुषार्थ यदि आपके पास है तो आप उतार सकते हैं। मुनि बनने वाले 55 किलो भार उतारते हैं, देखो कैसे कैसे वो 55 किलो कैसे हिसाब किताब बता देते हैं आपको। मुनि महाराज सम्यक दर्शन के साथ ही संयम धारण करेंगे ना, सम्यक के साथ ही संयम धारण करेंगे। तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो कितना उतर गया, 41 उतर गया। अब असंयम भावों को उत्पन्न करने वाली कषायें दो हैं, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी। अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के कारण से 10 किलो भार सिर पर रहता है। कितने किलो? अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के कारण से 10 किलो भार सिर पर रहता है, और प्रत्याख्यानावरणी कर्म के कारण से भी असंयम भाव होते हैं ना। सीमा संयम भले ही होते लेकिन प्रत्याख्यानावरणी कर्म का उदय ये असंयम भाव ही है जो हमें सकल संयमी बनने में बाधक निमित्त बनता है, वह असंयम भाव को पैदा करने वाला ही है। लेकिन यहां पंचम गुण स्थान में जो सीमा संयम भाव प्रकट हुआ है वह अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के भार को उतारने से ये सीमा संयम भाव जागृत हुए, पंचम गुणस्थान प्रकट हुआ है। प्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय से पंचम गुणस्थान नहीं होता, अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के क्षयोपशम से पंचम गुणस्थान प्राप्त होता। एक सकल संयम है और एक सीमा संयम है, एक अनुव्रत है और एक महाव्रत है, एक देश संयम है और एक सकल संयम है। देश संयम यह संयम कर्म के उदय के कारण से प्रकट हुआ क्या कर्मों के क्षयोपशम से प्रकट हुआ? क्षयोपशम से प्रकट हुआ तो इसको हमें क्षयोपशमिक भाव कहना चाहिए। कौन सा भाव? संयम क्षयोपशमिक भाव है, औदयिक भाव नहीं। कोई भी संयम औदयिक भाव वाला नहीं होता। कोई भी चारित्र, कोई भी तपस्या त्याग ये औदयिक भाव वाला नहीं होता। यानी कर्मों के उदय से ये संयम प्रकट हुआ, कर्मों के उदय से ये तप प्रकट हुआ, ऐसा चारित्र प्रकट हुआ, ऐसा नहीं होता। कर्मों के उदय के कारण से धर्म जीवन में आएगा क्या? नहीं, कर्मों के उदय का फल नहीं है वो, कर्मों के भार को उतारने का फल है। तो चौथा गुणस्थान वर्ती एक श्रावक, आप जैसे श्रावक चौथे गुणस्थान में आना चाहते हैं तो कितने किलो भार को उतारना पड़ेगा? 41 किलो उतारना पड़ेगा। अब आप प्रतिमाधारी बनना चाहते हैं, कई लोग बनने के लिए तैयार हो गए हैं, महाराज उसका स्वरूप तो समझाओ, और टाइम नहीं मिल रहा है स्वरूप से समझाने के लिए। प्रतिमाधारी बनना बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बन सकते, पर स्वरूप आज न कल समझाना ही पड़ेगा, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है ना। ये 10 धर्म के 10 विषय, वो षोडश कारण के षोडश विषय, वो भी लेना पड़ता है, और प्रतिमाएं 11 हैं, आपको लेना 2 हैं या 5 हैं, 7 हैं या 11 हैं, तो 11 सभी का स्वरूप समझाना पड़ेगा। लेने के लिए उपाध्याय परमेष्ठी बताते हैं, आचार्य परमेष्ठी देते हैं, जो बताए वो उपाध्याय और जो दे वो आचार्य। सुबह कहा था ना, यही विषय हुआ। लेकिन आज पंचम काल में हम उपाध्याय नहीं बन सकते। उपाध्याय के 25 मूल गुण होते, वो 25 मूल गुण कहां से लाएंगे हम? किसी दूसरे के पास भी नहीं और अपने पास भी नहीं। वो 25 तो 25 2000 साल पहले ही उनके साथ ही चले गए। वो भद्रभाव श्रुत केवली, अंतिम श्रुत केवली रहे, उनको 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान था। 28 मूल गुणों को धारण करने के साथ साथ उपाध्याय परमिष्टि को 25 मूल गुणों को भी धारण करना अनिवार्य बताया है, उनको भी मूल गुण की कोटि में रखा है। मूल गुण वो कहलाते हैं जिनके होने पर ही परमिष्टि कहला सकते हैं। मूल गुण वो होते हैं जिनके होने पर ही परमिष्टि कहला सकते हैं। 28 हो तो साधु परमिष्टि, 25 हो तो उपाध्याय परमिष्टि। देखो 28 को गौण किया, 28 तो रहते ही हैं उपाध्याय के पास, लेकिन 28 को गौण करके जो विशेष उपाध्याय यानी पढ़ाने के लिए लायक परमिष्टि यदि हैं तो 25 का ज्ञान आवश्यक है। आज 25 में से एक का भी पूरा ज्ञान नहीं है, एक के अंश रूप में ज्ञान है, एकाध अंग का आंशिक ज्ञान है, तो हम उपाध्याय परमिष्टि कैसे? नहीं, मूल गुण नहीं आ सकते। ये उत्कृष्ट मूल गुण आए बिना हम उपाध्याय भी नहीं कहला सकते, इसलिए वो बातें छोड़ देते हैं। लेकिन उपाध्याय परमिष्टि आत्म कल्याण की बातों को जैसा बताते थे ऐसा ही आज भी साधु परमिष्टि बता सकते हैं। और ये औपचारिक बता रहे हैं इसलिए औपचारिकता से उपाध्याय कहो समझो तो बात अलग है, लेकिन वस्तुतः उपाध्याय नहीं है। 41 किलो का भार उतारने पर श्रावक धर्म का धारण करने वाला माना जाता है, यह धर्म त्याग के बिना नहीं आया, त्याग से ही आया। कितने किलो का त्याग हुआ यहां? 41 किलो का त्याग हुआ, ये सच्चा धर्म है। बाहर का कुछ त्यागो नहीं त्यागो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई उपवास नहीं करना पड़ता, उपवास तो तप है, ये तप सम्यक दर्शन के बाद होना चाहिए। हाँ? और चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव को असंयमी कहा है, यानी उसके पास तप भी नहीं और संयम भी नहीं, व्रत नहीं, चारित्र नहीं। चारित्र के बिना तप करना व्यर्थ है, चारित्र के बिना यानी संयम के बिना, चारित्र कहो संयम कहो ये की बात है ना, चारित्र के बिना क्या करना व्यर्थ? तप करना व्यर्थ, और तप के बिना त्याग करना व्यर्थ, और त्याग के बिना त्याग के बिना खाली होना व्यर्थ। किससे खाली होगे? पहले तो अंतरंग से खाली होना पड़ेगा, और बाहर से खाली होके खड़े हो गए, ये खाली होना व्यर्थ। बाहर भी भार हैं, वे 10 हैं, 10 किलो बाहर कम हैं, अंदर में ही वजन ज्यादा है। देखो आपका शरीर वजनदार है कि वस्त्र वजनदार है? देखो बाहर जो होता है वो हल्का ही होता है, मूल शरीर जो होता है वो हम हैं, हम बहुत वजनदार हैं। कितने किलो के हैं हम? 70 किलो 90 किलो तक हैं, कोई कोई तो 100 के ऊपर भी हैं। सुमो पहलवान तो 500 किलो के हैं, सही में। एक पहलवान है दुनिया में सबसे मोटा, वो कितने किलो के हैं? 500 किलो। उनके लिए बैठने के लिए मजबूत दो कुर्सियां चाहिए पड़ती। आज त्याग धर्म है, वास्तविक त्याग के संबंध में हम जानकारी लें कि वास्तविक त्याग क्या है। अंतरंग त्याग ही वास्तविक त्याग है। शरीर के वजन को घटाना, ये वास्तविक त्याग हुआ, या वस्त्र को हटाना, ये वास्तविक त्याग हुआ। देखो, आपका वजन बढ़ गया है, अनावश्यक हो गया है, अनावश्यक भार बढ़ गया है शरीर का, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या राय देते हैं? शरीर का वजन घटाओ ये कहते हैं, क्या वस्त्र को जरा कम करो, हल्का वस्त्र पहनो ये कहते हैं? तो शरीर के संबंध में ही तो कहते हैं ना। तीर्थंकर भगवान भी कहते हैं, शरीर का और वस्त्र का तो डॉक्टर भी बता सकता है, लेकिन आत्मा का तो कोई भी दुनिया में बताने वाला नहीं है, एकमात्र भगवान ही बता सकते हैं। ये अंतरंग में इतने कर्म हैं, 120 किलो का आत्मा वजनदार है, ये किसने बताया? भगवान ने बताया। और भगवान ने जो बताया वो काम करेंगे ना, वो काम करने लग जाएंगे ना, तो डॉक्टर जो कहते हैं शरीर का भार घटाओ, तुम्हारा वजन बढ़ गया है, नहीं तो डेंजरस है ये, भगवान की वाणी के अनुसार आप चलेंगे, संयमी बनेंगे, संयम धारण करेंगे, अंतरंग कषायों को त्यागेंगे, आत्मा का कल्याण होगा, और अंतरंग कषायों को त्याग करने के साथ साथ बहिरंग परिग्रहों को त्याग करेंगे, तो एक ही बार खाना पड़ेगा कि 10 बार? बहिरंग परिग्रह को त्याग करने के उपरांत भगवान कहते हैं एक ही बार खाओ, एक ही बार खाना। क्यों भगवान? 10 परिग्रह छोड़कर 2 बार खाने से क्या होता है? 2 बार खा लेंगे और भूख लगी तो 3री बार भी ले लेंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसा करोगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मेरी जरूरत नहीं, मैं एक ही बार में बता देता हूं तुमको ये करना है। इससे अंतरंग आत्मा का भार भी कम होगा और शरीर भी तुम्हारे लिए साथ देगा, हल्का रहेगा और टिप टॉप रहेगी, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, मैं अकेला डॉक्टर तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ, शरीर के लिए भी पर्याप्त हूँ और आत्मा के लिए भी पर्याप्त हूँ। किंतु धर्म ये आत्मा के लिए है क्या शरीर के लिए है? जब ये विचार हम करते हैं तो धर्म तो दोनों के लिए होता है। जो संयम को संभालना चाहता है, जो आत्मा को सुधारना चाहता है, उसके लिए तो संयम चाहिए ही। संयम धर्म के बिना आत्मा पवित्र नहीं हो सकती, आत्मा भगवान नहीं बन सकता। जो आत्मा को सुधारना चाहता है उसके लिए संयम चाहिए, और संयम धारण करने के लिए शरीर चाहिए। कैसा शरीर चाहिए? तो हल्का शरीर चाहिए। वजनदार शरीर हो तो चलेगा क्या? नहीं, बैठना उठना भी नहीं आ रहा है, और सही ढंग से त्याग तपस्या नहीं कर सकते, हम सफल नहीं हो सकते। तो दोनों को कंट्रोल रखने के लिए, शरीर को भी कंट्रोल में रखो और आत्मा को भी कंट्रोल में रखो, 3 बार खाओगे तो शरीर का वजन बढ़ेगा, और यदि प्रथम गुण स्थान में रहोगे तो आत्मा का वजन बढ़ेगा। शरीर के वजन को घटाने के लिए संयम धारण करो कह रहे हैं, एक ही बार खाओ, तो एक ही बार खाएंगे तो वजन बढ़ने वाला नहीं है, 3 काल में वजन नहीं बढ़ सकता, और जैसा हम चलना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, वैसा हम कर सकते हैं त्याग तपस्या। इसलिए एक बार खाने का उपदेश भगवान के द्वारा हुआ। और फिर आत्मा को हल्का बनाना चाहते हो तो उन्होंने कहा घटाओ, 41 को पहले घटाओ। तो क्या धारण करो? सम्यक दर्शन धारण करो। तो सम्यक दर्शन धारण करने के बाद धर्म तो आ गया, एक धर्म आया और उसके साथ सम्यक ज्ञान भी आ गया, दो धर्म आ गए। देखो उपवास तक नहीं किया, कुछ करना नहीं पड़ा, केवल भगवान का दर्शन करते करते ही, मंदिर जाते जाते ही। मंदिर जाने का लाभ ये है, फायदा ये है कि आप वास्तविक धर्म को धारण करने लगते हैं। क्या करने से? मंदिर जाने से। आप लोग रोज मंदिर जाते हैं? जाते हैं? कितने लोग जाते हैं रोज मंदिर? सभी जाते हैं। तो मंदिर बहुत पहले से जाते होंगे, बहुत पहले से जाते हैं। तो वजन कम हुआ कि नहीं हुआ? वजन कम हुआ कि बढ़ा हुआ है? 120 का 20 ही है कि कम हुआ है? भगवान ने बताया रोज मंदिर जाओगे तुम्हारे आत्मा का वजन निश्चित एक न एक दिन कम होगा। दर्शन करते करते ही सम्यक दर्शन होने वाला है, सम्यक दर्शन ऐसा नहीं आएगा। वीतरागी भगवान का जो नित्य दर्शन करते हैं भक्ति के साथ, भक्ति भाव के साथ, विशुद्धि को बढ़ाते हुए जो दर्शन करते हैं, उससे निश्चित रूप से एक समय एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन एक साथ 41 किलो का वजन हमारा घट जाएगा। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ। हम धर्म 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 से प्यासे थे, अब धर्म प्राप्त हो गया। ये अनादिकाल से प्राप्त नहीं हुआ था, ये 41 किलो का वजन अनादिकाल से घटा नहीं था। और एकाएक ही विशुद्धि बढ़ गई, भगवान का दर्शन करते करते 41 किलो कम हो, बहुत अच्छा है। लेकिन 41 किलो कम करने से आपके पास उत्तम त्याग धर्म नहीं आया। 41 40 और ऊपर का एक और 41। पुराने लोगों को ऐसा बताना नाकी पत्र हत्ता हत। लोग पुराने लोगों को ऐसा बताना पड़ता है 40 के ऊपर और एक। हाँ हाँ समझ गए। 41 याडी पत्र हत्ता याडी पत्र वंदा याडी पत्र वंदा अंदर 22 ಸಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತೊಂದ ಹಿಂಗ ಒಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। पहले के लोग अशिक्षित थे ना, निरक्षरी थे, उनको 1 2 3 4 ये गिनती भी नहीं आती थी। तो वो घर में चर्चा होती थी, ये साड़ी कितने में लाए? याडी पत्र हत्ता अंदर 22 यार्ड नोट कोटनु मत अत्र में वो 10 कोटी जान नोट। ऐसा 41 किलो का भार उतर गया तो क्या उत्तम धर्म हमारे जीवन में प्रकट हुआ? नहीं हुआ। फिर इसको क्या कहें? ये भी तो धर्म है और वास्तविक धर्म है, सम्यक दर्शन है ये तो, और आत्मा का धर्म है, आत्मा में प्रकट हुआ है। और दो प्रकार का प्रकट हुआ है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। इसको कौन सा धर्म कहे हम? उत्तम कहे कि अनुत्तम कहे कि केवल धर्म ही कहे, क्या कहें? तो हम इसको नाम देते हैं देखिए। चौथे गुणस्थान में यदि कोई श्रावक आया है तो सम्यक धर्म को धारण किया है। इसको सम्यक धर्म क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि इसके उपरांत जो आने वाला चारित्र है उसका सम्यक पना भी इस पर डिपेंड है। सम्यक दर्शन के हुए बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। तो सम्यक चारित्र को धारण करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान धारण करना पड़ेगा, और वो प्रकट हो गया, इसलिए इसका नाम सम्यक धर्म प्रकट हुआ है। सम्यक दर्शन धर्म प्रकट हुआ है, सम्यक ज्ञान धर्म प्रकट हुआ है। ये दोनों समीचीन हैं, धर्म के क्षेत्र में समीचीन हैं, इसलिए ये सम्यक धर्म है। दर्शन कैसा है? सम्यक, मिथ्या नहीं है। ज्ञान कैसा है? सम्यक, मिथ्या नहीं है। और इसमें सम्यक विशेषण जो जुड़ गया उसका क्या अर्थ? समीचीन, यथार्थ, सत्य, असली, वास्तविक। ये जो सम्यक विशेषण जुड़ गया ये किस कारण से जुड़ा? तो 41 किलो भार कम होने से जुड़ा। सिर पर का बहुत बड़ा भार उतर गया, अनादिकाल से यही उतर नहीं रहा था, इतना उतार दिया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बीच में निश्चित रूप से आपको लिखित लाइसेंस है, परमिट है, आपको मोक्ष मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आप अनंत संसारी नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। देखो कैसा हल्का हो गया कम से कम जय बोला है तो मिल गया होगा, तभी तो बोला है। ऐसे आत्मा हल्का हुए बिना जयकारा भी नहीं लगा सकती। जिसका भार वजन उतर गया है उनको आनंद होता है। कम से कम हमारे जीवन में 41 किलो का भार प्रथम बार उतारा, अनादिकाल से उतार नहीं पाया था मैं। ये आत्मचिंतक, ये आत्मा आत्मचिंतक बने तो ही उतर सकता है। पर से क्या लेन देन? वो लोग, ये लोग ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, छोड़ो बातें। आत्मा से पूछो तुमको क्या चाहिए, मैं दे देता। और आत्मा को जो आप दोगे, उसको जो दोगे उससे सुखी रहोगे। लोगों के कहने से इधर उधर डामाडोल हो जाओगे तो कोई सुखी होने का कोई रास्ता, चांस नहीं है। और यह पर्याय चूक गए तो चूक गए। अब कितने भव, वहां पर निमित्त मिला नहीं मिला, कहां किस गति में जाएंगे कोई पता नहीं, वहां सम्यक दर्शन मिलेगा नहीं मिलेगा क्या भरोसा है? मान के चले मिलच खंड में ही जन्म हो गया, मिलच मनुष्य बन गए, तो वहां पर तो गुणस्थान कितने हैं? वहां एक ही गुणस्थान है, और वहां पर भी मनुष्य पर्याय एक और व्यर्थ जाएगा। व्यर्थ क्या? वहां धारण ही नहीं कर सकते तो व्यर्थ कैसे कहेंगे? वहां तो ऐसा ही निकालना पड़ेगा, वो भव चला गया। और फिर गारंटी थोड़ी है कि आप मरण करके आर्यखंड में आएंगे, पुनः वहीं पर जन्मे मिलेच्छ खंड में ही। क्या भरोसा? मिलेच्छ खंड में ही भी जन्म सकते, या मिलेच्छ खंड से मरण करके त्रियंच गति में जा सकते? त्रियंच गति में कितनी सारी योनियां हैं, कितने सारे भेद हैं, 85 भेद हैं। 2 महीने से पढ़े थे, अध्ययन किए थे 10 लक्षण से पहले, वो 85 में कहीं भी जा सकते हैं। मनुष्य वो जाएगा धर्म के बिना? जाएगा, कब तक जाएगा? ऐसा जाता रहा है आज तक, और इस भव में हम जगेंगे नहीं तो फिर कभी नहीं जग सकते। इस भव में नहीं जगेंगे तो कभी नहीं जग सकते। फिर ये भी भव चला गया। सिर्फ 41 किलो का वजन घटाने से आप धर्मात्मा बनते हैं। कोई 10 लक्षण पूजा, षोडश कारण पूजा, उपवास, तप, त्याग, वो छोड़ो ये छोड़ो, यहां पर शर्त ही नहीं है। यह सम्यक दर्शन ये हमारा कुलाचार धर्म है। ये कैसा धर्म? कुलाचार धर्म है। ये मानव कुलाचार। मानव को यदि आप धर्मात्मा कहना चाहते हैं तो सम्यक दृष्टि होने पर ही उस मानव को धर्मात्मा कह सकते हैं, और यदि ये केवल मानव है लेकिन धर्म नहीं है इतना कहना चाहते हैं तो आठ मूल गुणों को धारण करने से कह सकते हैं। कैसे आठ मूल गुण? पांच स्थूल पापों का त्याग और तीन मकार त्याग, मद्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग। ये हमारा मानव कुलाचार है, इसको जैन विशेषण मत जोड़ो। जो मद्य मांस मधु का त्याग करता है वो जैन नहीं, वो एक आदर्श मानव है, आदर्श मानव है। और जो आदर्श मानव बनकर के खड़ा हो जाता है वही धर्म को स्वीकार करने का पात्र बन जाता है। और यह सम्यक दर्शन धर्म जैन धर्म है क्या विश्व धर्म है? हाँ, विश्व शब्द लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि चारों गतियों में रहने वाले संसारी जीव इस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। विश्व यानी तीन लोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक। अधोलोक में भी इसका इसकी प्राप्ति होती है, ऊर्ध्वलोक में भी इसकी प्राप्ति है, मध्यलोक में भी इसकी प्राप्ति है। इसलिए ये विश्व धर्म है, इसको जैन मत जोड़ो। क्योंकि जैन शब्द को आप उस दृष्टि से देखते हैं, वो शब्द अपना महत्व खो गया है, उसकी महिमा बहुत है, उसका महत्व बहुत है, लेकिन वह महत्व इसलिए खो गया कि जैन कहते ही कुछ वर्ग वर्ग विशेष ख्याल में आता है। जैन कहते ही वर्ग विशेष ख्याल में आता है तो ऐसा क्यों ख्याल में आता है? नहीं महाराज, वो 24 तीर्थंकरों के अनुयायी हैं वो जैन है। ठीक, वो अनुयायी क्यों बन गए? उनमें कुछ विशेष कोई बात होगी ना। उनके अनुयायी ही आप क्यों बन गए? जन्म के साथ तो एक मानव ही थे, केवल मनुष्य गति में आए थे। आपने तीर्थंकरों का मार्ग ही क्यों अपना लिया? और भी लोग धर्म बता रहे थे, वहां क्यों नहीं गए? वहां जो हमारे पास है वही उनके पास है, और हम में और उनमें क्या अंतर? फिर मैं भी रागी, वो भी रागी, मैं भी अज्ञानी राग के कारण, तो फिर वो भी रागी तो राग के कारण वो भी अज्ञानी, तो फिर वहां जाऊं तो किस कारण से जाऊं? राग पाने के लिए? नहीं, मुझे राग नहीं चाहिए। जिसके पास राग नहीं है उसको ढूंढूंगा। जो वीत राग हैं, जिनका जीवन निर्मल है, पवित्र है, वीत राग गुण होता है, राग दोष होता है। दोष की पूजा होती है या गुणों की? तो गुणों की। इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। गुणों की पूजा होती है, गुणों के कारण से हम यहां आए हैं, और ये गुण अगर कहीं भी मिलते हैं अन्यत्र तो वहां भी जाएंगे। वीतरागता मिलनी चाहिए। वह उपास्य हमारा राग से सहित न हो, राग से युक्त न हो, वो हमारा उपास्य। और नाम से कोई भी हो सकता है, नाम कोई भी रखो, ऊपर से उनका नाम रागी रखो चलेगा, हम उपासना करेंगे, रागी रखो, लेकिन अंदर भीतर वीतरागता हो। धर्मात्मा नाम की पूजा करता है या गुणों की पूजा करता है? वो गुणों की पूजा करता है। गुणों का पूजक विवेकी माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है, और दोषों का पूजक अज्ञानी माना जाता है, उसको अज्ञानी कहते हैं। तो जहां अज्ञान है वहां विवेक होता है क्या? नहीं, अज्ञान के साथ अविवेक का संबंध है और ज्ञान के साथ विवेक का संबंध है। ज्ञानी गुणों की पूजा करता है, अज्ञानी गुण और दोषों को न समझते हुए जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सबको उपास्य बनाकर दोषों की भी पूजा करता है और गुणों की भी पूजा करता है। इस प्रकार मिश्र मज्जिग भी आंबुल भी मिश्र ऐसा अंबली पीता है, नाचनी पीता है, और पीते समय वो अंदर जाता है, नींद आती है, नींद आते समय सिर हिलने लगता है, आगे पीछे होने लगता है, उसका नाम ही नाचनी है। नी नाचनी ना ना वाला खुद हार त्यान गार आत्मा द्वारा भोगी जानो गार नी नी नाचो ना हार त्यान फिर जाप भी दे रहे हैं तब भी वो अंबली कह नाचनी कह रही है मैं पेट में हूं नी नाचनी जाप मारते मारते नाचो। ये होता है, इसलिए कहा कि धर्मात्मा खाने पीने वाली वस्तुओं पर भी सावधान रहे, उसका भी त्याग करे, ये भी धर्म है, त्याग धर्म। नाचनी का त्याग भी त्यागना धर्म है, क्योंकि नाचना पड़ता है, इसलिए नाचना न पड़े इसलिए त्यागना पड़ेगा, ये भी त्याग धर्म है। चतुर्थ गुणस्थान में 41 किलो का भार उतर गया, यदि प्रतिमाधारी बनेंगे आप, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ये 12 अनुव्रतों का पालन करेंगे, इसको दूसरी प्रतिमा कहते हैं। पहली प्रतिमा सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से बचकर सम्यक दर्शन को निर्दोष रखना, ये प्रथम प्रतिमा का स्वरूप है। दूसरी प्रतिमा का स्वरूप है 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। इन 12 अनुव्रतों का पालन करने वाला दूसरी प्रतिमाधारी माना जाता है। यदि 2 प्रतिमा आप लेते हैं तो और 10 किलो का भार कम हो जाता है। तो कितने किलो का कम हो गया? 51 उसने घूमना त्याग कर दिया आज। अनादिकाल से घूमते घूमते आए हैं संसार में, उसने घूमना त्याग कर दिया। देखो ना, उस घड़ी ने धर्म स्वीकार किया, मैं त्याग देता हूँ, ये लोग कुछ भी नहीं त्यागते तो कोई बात नहीं, मैं घूमना त्याग कर देता हूँ। आप लोगों को संसार में घूमने का त्याग करना है। हाँ, वो हिल तो रहा है लेकिन घूम नहीं रहा है। 6:15 बज गया है और 6 बजे तक का टाइम है, नहीं है? दूसरी प्रतिमा धारण करने के बाद 10 किलो का वजन उतर गया, 10 किलो प्लस 41 किलो, कितने किलो? 51 किलो। घर में रहकर 51 किलो का वजन घटा दिया, कितना महान है। और मुनि बनने के बाद तो केवल 4 किलो ही और बढ़ जाता है, वजन उतरता है। कितना किलो? 55 किलो मुनि में और श्रावक में। तुलना करें तो किलो केवल 4 किलो का वजन डिफरेंस है। संवर की अपेक्षा, संवर ही तो वजन है ना, संवर हो गया तो उतर गया उतना, संवर की अपेक्षा से। यानी जिनका संवर हो रहा है उनका बंद नहीं होगा, आएंगे नहीं। वो जो जितना वजन घट गया वो घट ही गया, वो आने वाला नहीं। अब ये संवर है और आश्रव के बिना बंद नहीं होता। तो आश्रव कब होता है? जब उदय रहेगा तभी आश्रव होगा, उदय के बिना आश्रव नहीं होता। इसलिए हमें संवर करना है। संवर करने के लिए उदय को हटाना पड़ता है। उदय के भार को जितना उतारेंगे उतना संवर होता 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 जाएगा। कितनी अच्छी बात बता दी आज। श्रावक कितना महान है, पंचम गुण स्थान में रह करके भी केवल 4 किलो के वजन को अंतर में रख रहा है। मुनि में 4 किलो कम है और श्रावक में 4 किलो अधिक है। वही जा रहा है तो उसको भी छोड़ो, कौन मना करता है? भारी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यदि प्रतिमा पालन करते हुए भी 4 किलो बहुत ज्यादा लग रहा है तो उसको भी त्याग दोगे तो श्रमण धर्म को स्वीकार करोगे, छठा सप्तम गुणस्थान हो जाएगा। और ये त्याग धर्म है। कितने किलो के भार को कम करना उत्तम त्याग धर्म है? 55 किलो त्याग करना उत्तम त्याग धर्म है। उसके नीचे सम्यक धर्म है, उत्तम त्याग धर्म नहीं है। ये उत्तम त्याग धर्म का लक्षण है। समझ में आया उत्तम त्याग क्या है? होगा, 4 किलो का अंतर है, थोड़ा प्रयत्न कर लो तो वो भी होगा। होगा, आशा रखो, आशा रखो, आशावादी बनो, आशावादी बनो। इस भाव में भले ही ना हो लेकिन उस 4 किलो के प्रति आज न कल इस 4 किलो को हटाऊंगा, हटाऊंगा, कम करूंगा, ऐसी भावना भावोगे तो निश्चित रूप से यहां से पंचम गुण स्थान को प्राप्त करके पहले स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से नियम से आकर के पुनः कर्म भूमि में जन्म लेंगे, मनुष्य गति में जन्म लेंगे और धर्म के साथ जन्म लेंगे। त्याग धर्म के साथ ही धर्म लेंगे। 41 का त्याग रहेगा आते समय भी, स्वर्ग गति से यहां आते समय, स्वर्ग से आते समय 41 का त्याग धर्म साथ रहेगा। और यहां आने के बाद फिर वज्र वृषभ नाराज सनन मिलेगा, मिलेगा। और फिर वज्र वृषभ नाराज सनन मिला है तो आप तो एक सुमो पहलवान बन करके जन्मे हैं। अब 4 किलो तो यूं एक इस अंगुली से भी हटा दोगे, ऐसी वज्र वृषभ नाराज सनन धारी बनोगे। ऐसा उत्तम त्याग धर्म आपके जीवन में आ जाए और उसी से सारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। घाती कर्मों के नाश के लिए सकल संयम चाहिए। सकल संयम ही नहीं, उसको भी पार करके जब यथा क्या चारित्र को पा लेते हैं तो वह यथा क्या चारित्र हमारे लिए संपूर्ण भार को, यानी कर्मों के भार को, कितने कर्मों के भार को, 47 घाती कर्म हैं, 47 घाती कर्म हैं और शेष आघाती कर्म हैं। वहां पर 50-50 हो जाता है, 4 घातिया कर्म रह जाती हैं और शेष घातिया आघाती, 4 आघातिया कर्म रह जाती हैं और शेष घाती कर्म नष्ट हो जाती हैं। घाती कर्म को नष्ट करने के बाद तो आत्मा हल्की हल्की हो जाती है। देखो त्याग धर्म की महिमा कैसी है। मुनि बनने के बाद तो हमें जमीन पर चलना पड़ता है, अरहंत बनने के बाद तो जमीन पर चलना चाहे तो नहीं चल सकते, इतना हल्का होता है। शरीर भी हल्का और आत्मा भी हल्की, ऐसा हल्का 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 होते हुए लास्ट में फुल्का बनो। चपाती मत बनो, चपाती बहुत वजनदार होती, जड़ फुल्का, फुल्की खाने में मस्त रहता है वो फुल्की। चपाती खाओगे तो पेट में दर्द हो सकता है, फुल्की खा करके आज तक किसी को भी पेट में दर्द नहीं हुआ है। हल्का बनने में सुख है, त्याग में ही सुख है। हमने अनादिकाल से ग्रहण किया है, ग्रहण भोग मार्ग है, संसार मार्ग है, वो प्रवृत्ति मार्ग है, और त्याग जो है वह योग मार्ग है, धर्म मार्ग है, और वह सुख का मार्ग है। ऐसे सुख को, शाश्वत सुख को आप यदि पाना चाहते हैं तो उत्तम त्याग धर्म की पूजा तो की है, लेकिन उसको धारण करने का संकल्प भी करो कि आज न कल हमें इसको धारण करना ही है। ऐसे धारण करने का संकल्प जिसको है वह सम्यक दृष्टि जीव श्रावक होते हुए भी वह पावन माना जाता है, आदर्श माना जाता है। श्रावक धर्म भी आदर्श है और मुनि धर्म भी आदर्श। ऐसे मुनि धर्म के लिए बार बार हम वंदना करें, नमस्कार करें, जो मोक्ष प्राप्ति में यही एकमात्र कारण है। अहिंसा परमो धर्म। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जय वंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।
Wow.